कृष्ण, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। पिछले बुधवार हमने श्लोक लिया जब अर्जुन अपने समक्ष अपने ही रिश्तेदारों संबंधियों को देख रहे हैं और प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोण, तान समीक्षस कौन्तेय, और अपने समक्ष कुंती पुत्र अर्जुन ने जब इन सबको देखा तो विषीदन, विषाद में पड़ गए अर्जुन। और विषाद में पड़ते हुए कृपया परयाविष्टो, उनके अंदर एक बहुत ही विशेष प्रकार की कृपा भावना जागृत हुई इनके प्रति। कल गांधी जयंती है, गांधी जी बहुत प्रसन्न हुए होते अर्जुन के इस प्रकार के अहिंसा भरे व्यवहार को देखकर। इतनी कृपा कि यदि कोई थप्पड़ मार रहा है गाल पर तो दूसरा गाल उसका कि अपना आगे कर दो। तो यहां पर जब अर्जुन इस प्रकार की कृपा भावना दिखा रहे हैं, परंतु संजय केवल ये नहीं कह रहे कृपया परयाविष्टो कि ये एक अच्छा गुण है, कृपा किसी के प्रति जागृत होना अच्छा गुण है, परंतु उसके साथ साथ संजय कहते हैं विषीदन, विषाद वो ठीक गुण नहीं। तो यदि कृपा इस हद तक किसी के हृदय में आ जाए कि उसके वजह से विषाद जागृत हो हृदय के अंदर, तो क्या समझना चाहिए? यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के प्रति कृपा भावना जागृत हुई है वो योग्य व्यक्ति नहीं है। यदि उस कृपा भावना से विषाद जागृत हो रहा है तो वो व्यक्ति योग्य नहीं कृपा प्राप्त करने की। यह संजय संकेत द्वारा बता रहे हैं। तो उसी एक ही श्लोक में कृपा और विषाद, इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इसके पश्चात आज का ये श्लोक भी कुछ उसी प्रकार का है, परंतु क्योंकि कुछ विशेष शब्द आज के श्लोक में हैं, क्योंकि आज के श्लोक से अब अर्जुन बोलना शुरू किए हैं और अलग 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 प्रकार के कारण वो देने वाले हैं कि क्यों ये युद्ध नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से अर्जुन क्यों ये युद्ध नहीं करना चाहते। तो ये श्लोक अब अर्जुन उवाच, पहला श्लोक अर्जुन अब अपने मुख से बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के वजह से, इनकी कृपा के वजह से हमें भगवद गीता का ज्ञान मिला है। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वे मम स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वे मम स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, दृष्ट एवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा से उपस्थित, युद्ध की इच्छा से जो उपस्थित है अर्जुन के सामने दृष्ट्वा, उनको जब अर्जुन ने देखा, और वो अर्जुन ने कैसे देखा उनको, स्वजन, अपने स्वजनों के रूप में देखा कृष्ण। अर्जुन ने भगवान को इस नाम से पुकारा, कृष्ण, हे कृष्ण। और अर्जुन कहने लगे, सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि मेरे अंदर कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और कंपन हो रहा है मेरे शरीर में। तो अर्जुन यहां पर अब भगवान को कृष्ण उल्लेख कर रहे हैं और स्वजन ये शब्द भी उल्लेख किया है। तो सबसे पहले हम स्वजन को लेंगे। स्वजन का अर्थ क्या है? स्व का अर्थ है स्वयं, और जन का अर्थ है व्यक्ति, कोई भी प्रकार का व्यक्ति, जन साधारण या कोई हमारा रिश्तेदार, सगे संबंधी, जो भी, उसे वो उस जन की कैटेगरी में आएगा स्वजन। तो अब स्वजन दो प्रकार के होते हैं। एक स्वजन है जो शरीर के स्तर पर है, और एक स्वजन है जो आत्मा के स्तर पर। तो शरीर के स्तर पर हमारे स्वजन कौन है? जो जिस परिवार में हम पैदा हुए, तो जिस परिवार में हम पैदा हुए, हम उन परिवार वालों को अपना स्वजन कहते हैं, कि मेरा स्वयं का भाई है, ये मेरे स्वयं के पिता हैं, माता हैं, ये मेरे स्वयं का पुत्र, पुत्री इत्यादि जो कुछ। तो ये संबंध इतना गहरा होता है इस भौतिक संसार में, क्योंकि ये शरीर के स्तर पर है, और शरीर, ये भौतिक जो चेतना है इस भौतिक संसार में बहुत दृढ़ है। तो भौतिक चेतना होने के वजह से ये जो भौतिक संबंध है स्वजनों का भौतिक स्तर पर, ये बहुत गहरा रहता है। और आत्मा के स्तर पर हमारे स्वजन कौन है फिर? और कोई? भगवान, भक्त, गुरु, और कोई? सभी, सभी आत्मा के स्तर पर स्वजन है। हम जानते नहीं, अलग बात है, हम मानते नहीं, ये भी अलग बात है, हम उसे स्वीकार नहीं करते, उस स्तर पर जीते नहीं, आदान प्रदान नहीं करते, ये अलग बात है। परंतु जितने सारे जीव हैं उन सब में आत्मा है कि नहीं? सारे जीवों में आत्मा है। और अब जैसे देखिए कि शरीर के स्तर पर हम किसे स्वजन कहते हैं। जैसे कोई पिता यदि कहे कि ये जो पुत्र है मेरा, ये मेरा स्वजन है, क्योंकि पिता जानता है कि मेरे शरीर का एक भाग है, ये मेरे शरीर से निकला है ये भाग, और इसलिए कई बार उसमें समानताएं भी दिखती हैं, पिता पुत्र में समानताएं दिखती है शारीरिक स्तर पर, कुछ आंखें एक प्रकार से हों। जैसे बच्चा पैदा होता है तो लोग बोलते हैं, अरे पिता पे गया है, मां पे गया है। दोनों मां पिता पे नहीं गया, किस पे गया? दादाजी पे गया। तो शारीरिक रूप से कुछ समानताएं होती हैं, और फिर धीरे धीरे शारीरिक स्तर पर और भी बहुत सी समानताएं उस पुत्र को अपने पिता के द्वारा प्राप्त होती, भाषा। तो मानो पिता वो मराठी बोलता है तो पुत्र भी उस भाषा को अपनाता है, तो वो समानता एक हो गई, तो उसमें वो स्वजन हो गए फिर, कि दोनों की भाषा एक हो गई, दिखने में थोड़े एक जैसे दिखते हैं, आदतें, साधारणतः आदतें एक परिवार की एक प्रकार की होती हैं, एक प्रकार का खाना पीना, एक एक तरीके से रहना, एक प्रकार का शिष्टाचार, एक प्रकार की संस्कृति। तो यदि हम आत्मा के स्तर पर देखें कि आत्मा के स्तर पर यदि एक सुअर, सुअर के अंदर आत्मा है और मेरे अंदर आत्मा है, समान है कि अलग है? हाँ? समान है ना। सुअर का आत्मा क्या मेरे आत्मा से अलग है? नहीं ना। कोई शंका है आप लोगों को? सुअर का आत्मा और मेरा आत्मा एक समान है, तो मुझ में और सुअर में कोई अंतर है? हाँ? तो एक दृष्टिकोण से अब वो सुअर मेरा स्वजन हुआ, इसलिए मैंने अपना ही उदाहरण लिया और किसी का नहीं। तो अब यदि कोई मुझे पूछे, किसी फॉर्म में कुछ लिखना है, तो पूछा जाए कि आपके किसी स्वजन का नाम बताइए, गली नंबर 14 का सुअर, तो क्या ये उत्तर सही है या गलत है? सही है? गलत है। क्यों? वो स्वजन नहीं हो सकता। परंतु यदि हम बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं, तो सुअर अपना शरीर कैसे हुआ? वो भी आत्मा है वास्तविक रूप में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसलिए इस पर, इस मुद्दे पर थोड़ा गौर किया करते थे और जोर देकर बोलते थे, यूनाइटेड नेशंस। कि यूनाइटेड नेशंस क्या है? हम सब यूनाइटेड हैं आत्मा के स्तर पर, तो आत्मा के स्तर पर हम सब यूनाइटेड हैं और हमारे एक पिता हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो परिवार में भाई बहन, भाई भाई इत्यादि, वो इतने अपने आप को स्वजन क्यों मानते हैं? क्योंकि एक माता पिता उनके, इसलिए कि हां मेरे भी माता पिता ये हैं और इनके भी माता पिता ये हैं, सहोदर, एक ही उदर से जो आए हैं, सहोदर कहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यदि हम सब देखें तो सुअर, बिल्ली, कुत्ते, पेड़ पौधे, हम सब मनुष्य, हम सब एक ही पिता से आए हैं। पिता हम अस्य जगत, माता धाता पितामह, भगवान कहते हैं। वो कहते हैं न केवल वो पिता है बल्कि माता भी है, पितामह, सब कुछ है वो। तो उस दृष्टिकोण से हम सब फिर स्वजन हुए एक दूसरे के। तो यहां पर जब अर्जुन इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वजन, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाएंगे कि याद है तुमने स्वजन कहा था, अब स्वजन का अर्थ समझो कि वास्तविक रूप में हम सबके स्वजन कौन है। तो इसलिए यह हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक परिवार में भी जब तक हम आत्मा के स्तर पर आदान प्रदान नहीं करते परिवार वालों से, जैसे कि अर्जुन शरीर के स्तर पर आदान प्रदान कर रहे हैं और वही अर्जुन आगे चलकर आत्मा के स्तर पर करेंगे, तो जब तक हम आत्मा के स्तर पर हमारे जो स्वजन हैं परिवार के, उनके साथ उस स्तर पर आदान प्रदान नहीं करते, तब तक विषाद, उस विषाद में हर समय हम डूबे रहेंगे। तो अब यदि हम इस स्वजन शब्द को केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित जाने कि वो हमारे असली स्वजन हैं, क्योंकि हमारे स्वयं के जन वो हैं भगवान। कैसे? भगवान का एक नाम है जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। जनार्दन का अर्थ है, इसे यदि हम विभाजित कर समझें फिर से, जैसे स्वजन का जन, वैसे जन और आर्दन। तो आर्दन, इसके दो अर्थ हैं। आर्दन के संस्कृत में एक अर्थ होता है कष्ट, और एक और अर्थ आर्दन का होता है याचना। तो भगवान श्री कृष्ण जिनका ये नाम है जनार्दन, आगे चलकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस नाम से पुकारेंगे जनार्दन। तो जनार्दन का अर्थ है कि जो जन के कष्टों और याचनाओं, पहले जन जो है हम सब जन, जन साधारण, तो हम कष्ट में रहते हैं, इसलिए हम याचना करते हैं भगवान से, इसलिए भगवान हमारा कष्ट दूर करने के लिए और हमारी याचना को पूरा करने के लिए जो आते हैं, इसलिए उन्हें यह नाम मिला है जनार्दन। तो यहां पर अब अर्जुन भगवान को जब भगवान के नाम के साथ स्वजन कहा है, तो भगवान अर्जुन जब कहते हैं दृष्ट्व एमम स्वजनम कृष्ण, तो इसका दो अर्थ हुआ। एक तो कि हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को देखकर इस प्रकार के विकार महसूस कर रहा हूं। एक और अर्थ इसका क्या हुआ, हे मेरे स्वजन कृष्ण, कि मैं जब इनको देख रहा हूं तो मेरे अंदर इस प्रकार के विकार उठ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को स्वजन पुकार रहे हैं, स्वजन अर्थात फिर जनार्दन, जनार्दन का अर्थ कि हे मेरे कष्ट और मेरी याचनाओं को सुनने वाले स्वजन कृष्ण। तो बहुत, ये दोनों शब्द बहुत गहरे हैं, स्वजन और कृष्ण। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, देखिए, जब हमारा दुख दूर करने के लिए आते हैं तो उसमें भी भगवान की ये एक लीला है, इसलिए भगवान को ये नाम मिला। जैसे भगवान के लीला नाम है गोपीनाथ, रास बिहारी, दामोदर, इन सब लीलाओं से भगवान को ये नाम मिला है। तो जनार्दन ये भी भगवान का एक मुख्य नाम है जो कि भगवान को इस लीला से प्राप्त हुआ। जैसे दामोदर, भगवान को दामोदर लीला से प्राप्त हुआ, तो जनार्दन नाम कौन सी लीला से प्राप्त हुआ, हम सब जिसमें शामिल हैं, हमारे कष्ट और हमारी याचनाओं को जो सुनते हैं, दूर करते हैं हमारे कष्ट, वो है जनार्दन। तो अब कृष्ण शब्द, इस शब्द को लेंगे क्योंकि अर्जुन ने अब सबसे पहले श्लोक में भगवान को कृष्ण उल्लेख किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भगवान के नामों में से प्रमुख नाम है कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ हम बहुत बार सुने हैं, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, कि जो सबको आकर्षित करे हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि हम भगवान को कोई नाम नहीं दे सकते, कोई भी भगवान को नाम नहीं दे सकता। जैसे कि हमारा नाम हमें मिलता है, वो नाम बदला जा सकता है, वो नाम भूला जा सकता है, वैसे ही हम कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान को भी ये नाम मिला। हालांकि गर्ग मुनि, इन्होंने नामकरण संस्कार किया कृष्ण और बलराम का, परंतु वो नामकरण संस्कार वो किस प्रकार से किए गर्गमुनि, उन्होंने नंद महाराज से कहा इनके सारे ये सारे गुण हैं इसलिए इनको ये नाम पहले से मिले हुए, मैं केवल बता रहा हूं। जैसे कि मान लो कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति है और उस धनवान व्यक्ति को किसी प्रांत में कोई जानता नहीं, तो वहां जाकर जब उसका परिचय दिया जाए कि ये हैं मिस्टर अंबानी और ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बहुत धनवान हैं, करोड़पति हैं जो भी, तो उस प्रांत के लोग यदि सोचे कि अरे आज इससे नया नाम मिला उद्योगपति, नया नाम मिला, तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो बोलेंगे अरे ये पहले से ही इनके अंदर ये गुण हैं इसलिए इन्हें सभी धनवान बुलाते हैं, आप लोगों को पता नहीं इसलिए आपको परिचय दिया है इनका, इसका अर्थ ये नहीं कि अभी अभी इनको ये नाम मिला है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से सर्व आकर्षित हैं, इसलिए नित्य रूप से उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, तो यह बात समझना आवश्यक है। अब यदि हम भगवान के अंदर जो आकर्षण शक्ति है, भगवान के अंदर की जो आकर्षण शक्ति है वो भगवान के अंदर कैसे प्राप्त हुई है, किसी भी व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति कैसे प्राप्त होती है, उसके अंदर कुछ रस होना चाहिए। जैसे हम प्रसाद के प्रति आकर्षित होते हैं, होते कभी कभी, क्योंकि उसके अंदर कुछ रस मिलता है हमें, हम कुछ वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उस वस्तु व्यक्ति के अंदर हमें कुछ रस प्राप्त हो रहा है, उसके हम चर्चा करेंगे अलग अलग प्रकार के कौन से रस हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं जिसके वजह से वो ये नाम उन्हें मिला है सर्व आकर्षित। तो इसलिए रस होने के वजह से ये आकर्षण शक्ति होती है। अभी जैसे कई बार लोग कहते हैं ना आजकल बोर हो रहा हूं, टीवी में कोई रस नहीं आ रहा है ना, खैर उसमें तो लोगों को बहुत रस आता है, जप में कोई रस नहीं आ रहा, ये अच्छा उदाहरण है नहीं? तो ये रस के वजह से ये जो आकर्षण शक्ति है ये पैदा होती है, इसलिए भगवान का ये एक नाम है या भगवान का एक पद है, रसो वै सह, रस खान, रस राज, जो सारे रसों के राजा हैं, जो रसों के खान हैं, रसो वही सह, जो सभी रसों के स्रोत हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो सबके स्रोत हैं तो उनके पास कोई रस नहीं। कई बार मायावादी वो इस प्रकार से कहते हैं अरे उनके अंदर सारे रस थे और वो स्रोत बने और उन्होंने सारे रस सब जगह पर बांट दिए, तो अब सारे रस कहां पर है, हमारे पास है और उनके पास कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे भगवान ने जब शकटासुर का वध किया तो ये असुर एक शकट के रूप में आया, गाड़ी जो बैल की या घोड़ों की गाड़ी होती है, शकट के रूप में ये असुर आया, परंतु ये शकट इसके ऊपर बड़े बड़े, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े भांडे बर्तन रखे हुए थे, नाना कूप्य रस भांडनम, बहुत अलग अलग प्रकार के साइज के बर्तन रखे हुए थे, नाना रस, और उसके अंदर रस बहुत अलग अलग प्रकार के थे क्योंकि उत्थान उत्सव था। उत्थान उत्सव का अर्थ है जब भगवान श्री कृष्ण पहली करवट लिए उसे उत्थान उत्सव मनाया गया, तो उस उत्थान उत्सव में माता यशोदा ने बहुत सी तैयारियां की थी और अलग अलग प्रकार की तैयारियों में यह एक तैयारी थी कि उस शकट के ऊपर इतने सारे बर्तनों में इतने सारे रस रखे हुए थे। तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उस शकट के नीचे जाकर सुलाया। तो उस शकट के नीचे भगवान को सुला दिया और माता यशोदा अब जाकर सभी अतिथियों का स्वागत कर रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हालांकि यह भी सोच रहे थे कि माता यशोदा ने मुझे अकेले क्यों छोड़ा, इसलिए बुलाया था मुझे यहां पर, इसलिए मैं आध्यात्मिक संसार छोड़ के आया कि मुझे एक गाड़ी के नीचे छोड़ दो। तो भगवान थोड़ा क्रुद्ध हुए, एक कारण था। और एक कारण था कि इस असुर का उद्धार करना था, तो इसलिए भगवान ने उस शकट को तोड़ा। परंतु तीसरा कारण यह था कि भगवान ने देखा कि ये सारे जो रस हैं इन बर्तनों में, ये सारे रस मेरे ऊपर कैसे, मैं रसो वही सह, तो मैं सभी रसों का स्रोत हूं और ये रस मेरे ऊपर, चलो नीचे। इसलिए भगवान ने केवल स्पर्श किया उस शकट को और सारे वो बर्तनों को नीचे गिराया, सारा रस इधर उधर। और फिर जब माता यशोदा भागते हुए आई तो भगवान माता यशोदा को दिखाए, असली रस इधर है, रसराज, रसो वही सह। तो भगवान रसो वही सह है। तो भगवान ने हालांकि अपनी कितनी लीलाओं में अपने अलग अलग प्रकार के जो रसराज होने की भगवान की पदवी है उसे दिखाया, परंतु एक विशेष भगवान की जो लीला, उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के रसों का आदान प्रदान भगवान ने किया अपनी इस एक लीला में, और विभिन्न प्रकार के भक्त कैसे भगवान से आकर्षित हुए, जो कि कृष्ण इस नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो आकर्षित हुए भगवान से, अलग अलग अपने स्वयं के रस में जो स्थित थे। तो ये लीला है जब भगवान श्री कृष्ण कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचे हैं, अक्रूर जी लेकर आए हैं, और वहां पर अब कंस ने सब कुछ आयोजित किया। क्या आयोजित किया है? एक रंगशाला जहां पर चाणूर और मुष्टिक और इत्यादि सारे बड़े बड़े पहलवान मुष्टंडे भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, ये उसकी योजना थी। तो अब हम मथुरा चलते हैं कंस की रंगशाला, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस की रंगशाला में प्रवेश करने से पहले भी बहुत कुछ किया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे अलग अलग जो मथुरा के निवासी अन्य नागरिक गण, वो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित कैसे हुए, किस रस में। और इस चर्चा में बताया जा रहा है कि 10 प्रकार के रस हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, रसो वही सह भगवान है, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षित हैं, वो सर्व आकर्षित हैं, इसलिए उन्हें नाम मिला है कृष्ण। तो इसलिए हम रस की चर्चा कर रहे हैं। यहां गन्ने का रस वगैरह नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, कि सीजन भी नहीं है आजकल। तो सबसे पहला रस रौद्र रस। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए अब कैसे अलग अलग, कई भक्त हैं, कई अभक्त हैं, कई राक्षस हैं, कई साधारण, कई भगवान को जानते तक नहीं, फिर भी भगवान से आकर्षित हो रहे हैं। तो सबसे पहले रौद्र रस, इस नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि ये किस प्रकार का रस भगवान के अंदर है, और भगवान के संबंध में जब कोई आता है तो उस व्यक्ति के अंदर भी इस प्रकार का रस पाया जाता है, तभी वो आकर्षित होता है भगवान से। तो रौद्र रस में कंस ने चार नहीं चार नहीं पांच है, ये पांच चाणूर मुष्टिक, हमने केवल दो का नाम सुना होगा, चाणूर और मुष्टिक, और तीन थे, तो पूरा पंच पंचिंग युद्ध था। चाणूर मुष्टिक कूट शल तोशल, देखिए नाम भी कैसे कूट। तो ये जो पांच पहलवान पांच मुशंडे कंस ने इन्हें बता रखा था कि किसे मारना है, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं था कभी कृष्ण बलराम को, तो ये केवल ये पहलवान थे, और पहलवान अक्सर किसे ज्यादा देखते हैं, अन्य पहलवानों को। तो अब जब ये बता दिया गया कि तुम्हें कुश्ती लड़ना है, और कंस स्वयं अपने मुख से, तो कंस जब स्वयं अपने मुख से इन पांचों को बता रहा है, तो इनको लगा कि शायद कोई बड़े होंगे मुष्टंडे, कोई हमारे लेवल के हमारे मैच के होंगे, कोई साधारण नहीं, क्योंकि कंस स्वयं बैठ रहा है मैच देखने के लिए, और कंस ने स्वयं ये सब कुछ रंगशाला का आयोजन किया है। तो ये सब अब कृष्ण बलराम आने से पहले, रंगशाला आने से पहले, ये जो पांचों थे ये एकदम आतुर थे, और ये कौन से रस में भगवान श्री कृष्ण बलराम की अपेक्षा कर रहे थे, रौद्र रस, कि कृष्ण और बलराम ये दो आएंगे और हम पांच हैं, तो आपस में चर्चा करें कौन किसे मारेगा, मैं पहले, ये कृष्ण नाम अच्छा लग रहा है इसको थोड़ा पिटूंगा मैं। तो फिर एक ने कहा अरे बलराम नाम ही देखो बल, तो मैं उसे लूंगा साइड में। तो बाकी तीनों हम क्या तुमको देखेंगे, नहीं हम मौका देंगे तुम तीनों को भी एक एक हाथ मारने का। तो आपस में भगवान श्री कृष्ण बलराम रंगशाला में आने से पहले ये सारी चर्चाएं, ये पहले से भगवान इसलिए थोड़ी देरी कर रहे थे आने के लिए, ताकि ये पांचों रौद्र रस में जाए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण बलराम की सुंदरता को देखकर तो मोहित नहीं होने वाले थे। तो भगवान जान गए कि इन पांचों को यदि आकर्षित करना है तो रौद्र रस में इन्हें पहले डालना होगा, तो उतना समय दिया ताकि ये उस रौद्र रस में अपने आप को बांध लें, ये अट गए वो रौद्र रस में। और फिर भगवान कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं। तो अब देखिए बाकी भी हम देखेंगे कि बाकियों ने भगवान कृष्ण बलराम को कैसे देखा, परंतु इन्होंने जब जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम को देखा, वही भगवान कृष्ण और बलराम, ऐसा नहीं कि भगवान बड़े हो गए दोनों और भगवान भी मुष्टंडे जैसे दिखने लगे, नहीं, परंतु इन पांचों को, ये रौद्र रस में थे तो इन पांचों को भगवान कृष्ण और बलराम वज्र के समान दिख रहे थे। तो ये जो पांच थे ये पत्थर के समान कठोर इनका शरीर, और इन्होंने जब कृष्ण और बलराम को देखा तो देखा कि कृष्ण और बलराम का शरीर वज्र के समान। अब बहुत अच्छी तुलना है, देखिए कि वज्र और पत्थर में से ज्यादा कठोर कौन होता है, वज्र, क्योंकि पत्थर भी चूर चूर हो जाते हैं जब वज्रपात होता है उनके ऊपर। तो यहां पर ये पांचों जब कृष्ण बलराम को वज्र के रूप में देख रहे हैं तो उस रौद्र रस में और बढ़ोतरी हुई, अरे आज तक हमने किसी ऐसे पहलवान से युद्ध नहीं किया जो कि वज्र के समान हो, हम केवल पत्थरों से लड़ रहे थे, हम पत्थर बाकी भी आगे पत्थर, तो पत्थर केवल टकरा रहे थे, परंतु आज टक्कर पत्थर और वज्र की। तो जैसे इन पांचों ने भगवान कृष्ण और बलराम को वज्र के रूप में देखा तो इतने आकर्षित हुए, इतने आतुर हुए युद्ध करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए कृष्ण और बलराम से, कि उस आतुरता, उस तीव्रता के वजह से इनका उद्धार हो गया। पहले से ही इनके मुक्ति के रिकॉर्ड्स में नाम चला गया। सोचिए, केवल उस तीव्रता आतुरता भगवान कृष्ण और बलराम के साथ कुश्ती लड़ने की, उसके वजह से रौद्र रस ये भगवान ने पैदा किया इनके अंदर, इन पांचों के अंदर। दूसरा है अद्भुत रस, ये मथुरा निवासियों में पाया गया कि मथुरा निवासी, उन्होंने जब कृष्ण और बलराम को देखा आते हुए, तो मथुरा निवासी कृष्ण और बलराम को एक अद्भुत व्यक्ति के समान देख रहे थे। तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये कैसे अद्भुत दो भाई हैं, कि है दो भाई परंतु एक है काला, एक है एकदम गोरा, एक सांवला और एक श्वेत, तो ये दोनों भाई कैसे, ये अद्भुत बात है। तो इस प्रकार के रस में वो गए, इस अद्भुत रस में। और फिर ये इतने अद्भुत तरीके के वस्त्र पहने थे भगवान कृष्ण और बलराम ने, उनके वस्त्र भी विस्मित कर रहे थे इन मथुरा वासियों को, विस्मय में डाल रहे थे। तो उनके वस्त्र, उनके चाल ढाल, जैसे वो चल रहे थे, तो ऐसे किसी को देखा नहीं चलते हुए। अब देखिए, साधारणतः हम जब चलते हैं तो हमारे अंदर भी आप देखोगे कि हर एक व्यक्ति की चाल अलग होती है, चाल से पहचान लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति चल रहा है। परंतु भगवान कृष्ण और बलराम की चाल तो सबसे अद्भुत, सबसे ज्यादा विस्मय में डालने वाली। तो जब ये कल्पना कीजिए कि आप कृष्ण और बलराम की चाल को देख रहे हो, वो कैसे चलते हैं। हम तो केवल यहां पर भगवान बैठे हैं, खड़े हैं, इतना ही दे, वो भी कभी कभी देखते हैं। यहां पर मथुरा निवासी कृष्ण और बलराम को चलते हुए देख रहे हैं, तो इनकी चाल अलग, इनके वस्त्र अलग, इनका रंग अलग। और जब कृष्ण और बलराम ने बोलना शुरू किया तो सोचिए वाणी, तो मथुरा निवासी, उन्होंने आज तक इस प्रकार का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वो उस विस्मय में जा रहे थे, अद्भुत रस में जा रहे थे। तो ये अद्भुत रस उनके साथ आदान प्रदान हुआ। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस कहते हैं जब एक युवक और युवती के बीच में जो ये रस होता है, इसे कहते हैं श्रृंगार रस। तो मथुरा की जो युवतियां थी उनके अंदर भगवान कृष्ण और बलराम को देखते ही, जैसे देखिए यही भगवान कृष्ण और बलराम, परंतु चाणूर और मुष्टिक ने देखा तो श्रृंगार रस पैदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो गोविंदम आदि पुरुषम श्रृंगार आरती गाने लगे अब, परंतु वही कृष्ण और बलराम के अंदर वो शक्ति थी कि वो श्रृंगार रस भी उसी समय पैदा कर सके इन मथुरा की गोपियों के हृदय में। और ये जो मथुरा की युवतियां थीं, इनके विषय में बताया गया है कि इनके अंदर, इनकी आंखों में द्वंद्व चल रहा था, बहुत विशेष प्रकार की स्पर्धा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के कौन से अंग को ज्यादा देखें। इसमें होड़ लगी थी कि भगवान कृष्ण और बलराम के चरण ज्यादा सुंदर हैं कि उनके हाथ ज्यादा सुंदर है, कि उनकी कमर ज्यादा सुंदर है, कि उनकी छाती ज्यादा सुंदर है, कि उनके कंधे ज्यादा सुंदर हैं, कि उनका मुख, कि उनके केश, मोर मुकुट। तो क्योंकि भगवान अब चल रहे थे और इनके अंदर ये अलग प्रकार का स्ट्रेस, जिसे कहेंगे आज की भाषा में, जैसे आजकल स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है कि कौन सी समस्या को पहले झेलूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कि फोन बिल, ऑफिस का टेंशन कि घर का। यहां पर इनके अंदर स्ट्रेस और टेंशन किसका था कि भगवान श्री कृष्ण के कौन से अंग में, ये निर्णय पर नहीं आ पा रहे थे कि कौन सा अंग ज्यादा सुंदर है। तो जब चरणों को देखते, अरे ये चरण तो शायद मुख से भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। फिर मुख की तरफ देखते, नहीं नहीं मुख ज्यादा सुंदर। फिर कंधों की, अरे कंधे भी ज्यादा सुंदर है। तो ये इनके अंदर श्रृंगार रस भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया। तो ये मथुरा की जो युवतियां थी, इनके अंदर ये श्रृंगार रस के साथ आदान प्रदान। जो भगवान के सखा थे, अब भगवान के सखा कहां से आए? वो वृंदावन से आए। मथुरा में भगवान के कोई अभी तक सखा नहीं बने थे, तो ये सारे सखा वृंदावन से आए थे। तो ये सारे सखा अब हास्य रस में चले गए, ये हंस रहे थे। ये किनको देख के हंस रहे थे? मथुरा निवासियों को देख के हंस रहे थे, क्योंकि मथुरा निवासी वो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप चरित्र को देखकर विस्मित हो रहे थे, और यहां पर ये सारे गोप सखागण ये उनको देख के हंस रहे थे। इतना क्या देख रहे हो इनके, इतने क्या विस्मित हो रहे हैं ये लोग सब। और सभी कृष्ण और बलराम को बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे थे। तो ये गोपगण ये आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये जानते नहीं रोज हारता ही है हमसे। और सभी भाग रहे थे रंगशाला इस कुश्ती के मैच को देखने के लिए। और ये सभी गोपगण ये कहे, अरे ये तो रोज हम करते हैं, रोज जब हम गैया चराने जाते हैं तो रोज कुश्ती होती है और रोज हारता है ये कृष्ण। तो इसलिए वो हंस रहे थे, वो हंस रहे थे कि हम में और इसमें क्या अंतर है, हमारी तरफ तो कोई नहीं देख रहा है, हम भी ग्वाले, ये कृष्ण भी ग्वाला, हम भी अशिक्षित, ये भी कौन सा स्कूल गया, ये भी हमारे साथ खाली गाय चराता है, तो हम भी ये वो भी ये, मतलब गांव वाले, तो क्या हम दोनों में इतना अंतर है। तो ये लोग इतना क्या इसमें देख रहे हैं, इतना विस्मित हो रहे हैं। तो उनका विस्मय देखकर ये हंसने लगे, और ये हंस किस पे रहे थे? भगवान कृष्ण पे। और भगवान को इसमें और आनंद आ रहा था कि ये मेरे पर हंसे, उसमें भगवान को ज्यादा आनंद आ रहा। तो भगवान थोड़ा और कुछ वहां पर लोगों के सामने अपना अद्भुत रस दिखाते और उनको विस्मय में डालते, ये और हंसते। तो इन दोनों के साथ आदान प्रदान, विस्मय अद्भुत और हास्य। अब विभिन्न राजा जिनको कंस ने बुलाया था, कंस ने सबको इनविटेशन कार्ड दिया था, सभी राजाओं को बुलाकर रखा था कि सभी राजाओं के सामने कृष्ण को मारूंगा मैं, ताकि सभी राजा जान जाएं कि कंस कौन है। तो इन सभी राजाओं को न्योता दिया था, सभी राजा वहां पर उपस्थित थे। परंतु जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया, रंगशाला में प्रवेश किया, तो कृष्ण और बलराम इतने निर्भीक और निर्भय कि सारे राजा वीर रस में चले गए, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी भी इस उम्र के बालक को इतना निर्भय नहीं देखा था। तो वो जानते थे कि चाणूर और मुष्टिक और ये शल और तोशल और कूट, ये पांच इनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते थे वो, कि इन्होंने ये सब क्या बोलते हैं WWF, वो जानते थे कि उस प्रकार के ये पहलवान मुष्टंडे, और कोई जीत नहीं पाया आज तक इनसे। और ये जानते हैं ये कृष्ण और बलराम, और जानते हुए इन्होंने प्रवेश किया, जैसे वो ये उदाहरण ज्यादा समझ में आएगा, जैसे जब वो कपिल देव प्रवेश करता था ना क्रिकेट फील्ड में, तो सभी अरे देवों का देव कपिल देव, और वो पीछे मुड़ता था ना, वो एंट्री करने के बाद थोड़ा पीछे मुड़ता था सूरज को देखने के लिए, सूरज को देखने के लिए और उनके सारे जितने फैन उनको देखने के लिए। तो सभी फिर अरे, या आजकल सचिन तेंदुलकर या और कोई प्रवेश करता है तो एकदम निर्भीक निर्भय तरीके से जब कोई प्रवेश करता है तो लोगों के अंदर पहले से ये आशा रहती है कि हाँ कि कुछ होगा, हमारे देखने लायक कुछ मैच होगा। और फिर जब निर्भीक तरीके से प्रवेश किया इन्होंने तो ये तुरंत, ये राजा, इनके अंदर वीर रस जागृत हो गया। ये वीर रस कैसा था कि हमें भी इस प्रकार की वीरता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये दोनों युवक सिखा रहे हैं हमें। तो भगवान ने तुरंत उसी समय, ये सब एक साथ रस भगवान पैदा कर रहे हैं सबके अंदर, तो उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम उस निर्भयता से प्रवेश किए तो वीरता, वीर रस इन राजाओं के अंदर जागृत किया भगवान ने। करुण रस जब वहां पर उपस्थित वरिष्ठ स्त्री पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के एकदम कोमल मृदु अंग, वही भगवान जिन्होंने वज्र के जैसा अपना शरीर दिखाया चाणूर्व मुष्टिक को, वही भगवान ने इन वरिष्ठ स्त्री पुरुषों को अपना एकदम कोमल स्वरूप दिखाया। तो जब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के इतने मृदु कोमल शरीर को देखा, अरे 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 ये लोग, तो तुरंत उनके अंदर करुणा जागृत हुई कि ये कंस कैसा नृशंस व्यक्ति है, इसे शर्म नहीं आती, इतने सुंदर बालकों को ये मुष्टंडों के सामने खड़ा कर रहा है। तुरंत उनके अंदर करुणा भावना, और तुरंत वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रक्षा का मंत्र गाने लगे, क्योंकि भगवान जानते थे कि उनकी जो उम्र है और वो जिस स्थिति पर में है, उस स्थिति में वो मेरे साथ केवल अपनी करुणा ही व्यक्त कर सकते हैं और कुछ नहीं, न तो कोई वीर रस, न तो कोई प्रकार का रौद्र रस, न श्रृंगार रस, एक ही केवल करुणा रस। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने करुणा जागृत की इन वरिष्ठ स्त्री पुरुषों के अंदर। जो वृष्णि वंशी उपस्थित थे, भगवान के ही वंश के, उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो दास्य रस में चले गए कि हमारे वंश के स्वामी, जो हमारे वंश वृष्णि वंश प्रदीप है, हमारे वृष्णि वंश के जो प्रदीप हैं, वो उन्होंने प्रवेश किया रंगशाला में। तो तुरंत इनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति दासत्व, दास्य की भावना जागृत हुई कि क्या क्या हम सेवा करें इनकी। टॉवल लेकर आए, पानी लेकर आए, जब इनकी अभी कुश्ती शुरू होने वाली है। शांत रस, कंस ने बहुत ऋषि मुनि योगियों को भी बुलाया था, तो बहुत से योगीगण, और बहुत से योगीगण जिनको कंस ने नहीं बुलाए वो अपने आप आ गए बिन बुलाए, क्योंकि वो जानते थे अरे हम जंगल में किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, जो हमारे ध्यान के एकमात्र केंद्र है वो तो यहां रंगशाला में है। तो वो आ गए वहां पर और वो बैठे, और उन्होंने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखा कि हमारे योग साधना के साध्य ये कृष्ण और बलराम, तो योगियों ने भगवान को उस प्रकार से देखा और शांत रस में वो चले गए, क्योंकि ये सारे योगी इतनी तपस्या में लगे थे कि तपस्या की अग्नि में जल रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उस घने बादल के समान था कि जो उस वर्षा को अब बरसाने वाले थे, कि जिस वर्षा से इनकी तपस्या की अग्नि शांत होने वाली थी, इसलिए ये शांत रस में गए ये सारे योगीगण। बिभत्स रस, देखिए भगवान श्री कृष्ण इस बिभत्स रस में भी आदान प्रदान किए कंस के पार्षदों के साथ। अब जो कंस के पार्षद थे, जो कि जानते थे कि कि हमारे स्वामी कंस, स्वामी महाराज कंस, जो हमारे स्वामी महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम को यहां पर क्यों बुलाया है, क्यों ये सब आयोजित किया है, तो ये विभत्स रस में कैसे गए? हालांकि वही कृष्ण और बलराम को देखकर युवतियां श्रृंगार रस में जा रही हैं, तो श्रृंगार रस जो कि भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें सुंदरता का वर्णन किया गया, और विभत्स रस में विभत्स चीज जो देखी नहीं जा सके। हुआ क्या कि कंस के रंगशाला में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कोल्यपीड उस हाथी का वध किया था। अब सोचिए, और हाथी का वध भी भगवान ने बहुत ही रोचक तरीके से किया। ऐसा नहीं कि भगवान ने वो हाथी का हार्ट अटैक देखकर उधर ही बिना खून खराबे, खून खराबा, चारों तरफ खून खराबा हुआ, और कंस ये जानबूझकर हाथी कोल्य पीड को वहां पर खड़ा किया था, क्योंकि कंस फिर भी डरा हुआ था कि मैंने 5 मुष्टंडे रखे हैं, परंतु ये कृष्ण बलराम, क्योंकि कृष्ण और बलराम का रिकॉर्ड क्या था, पूतना से शुरू कर पूतना, फिर तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, इन सब का वध करते हुए ये सब रिकॉर्ड कंस जानता था, तो इसलिए कंस भयभीत था, और इसलिए उसने बाहर उस हाथी को खड़ा कर दिया, हाथी को लड़ने के लिए छोड़ दिया, कि पहले ये हाथी, और कंस जानता था कि ये मार देंगे इसको, हाथी को, परंतु उस युद्ध में थक जाएंगे लोग, और थक जाएंगे, और थक कर जब आएंगे तब फिर मेरे चाणूर मुष्टिक आराम से मार पाएंगे। तो बहुत खून खराबा हुआ बाहर, रंगशाला के बाहर, जो बहुत कम लोग देखे। तो भगवान कृष्ण जब प्रवेश किए रंगशाला में, तो कंस के पार्षदों ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखा? भगवान श्री कृष्ण उस कोल्य पीड़ का दांत हाथ में लिए, ऐसा खून टपक रहा था उसके दांत से। सोचिए, वो हाथी का दांत, भगवान वो हाथी के दांत को अपने कंधे पर लिए, और भगवान ने उस हाथी को, हाथी के दांत को अपने कंधे पर केवल इनके लिए लिया, कंस के पार्षदों के लिए, क्योंकि ये और किसी रस में भगवान से आकर्षित नहीं होने वाले थे, केवल विभत्स रस में। तो भगवान उस हाथी के दांत को, जो कि खून से सना हुआ, टपकते हुए खून से वो दांत को अपने कंधे पर लेकर प्रवेश किया, तो कंस के पार्षद विभत्स रस में चले गए भगवान को देखकर। अंतिम रस, भयानक, और इस भयानक रस में महाराज कंस, भोजपति महाराज कंस, तो कंस भयानक रस में कैसे गया? भयानक इस शब्द में भय, भय ये शब्द भी आता है। तो कंस जिस दिन से आकाशवाणी हुई थी, उस दिन से कंस इस रस में था, हर समय भयभीत भयभीत, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण, कब आएंगे, कब मारेंगे, कब मैं मरूंगा। तो अंततः भगवान बोले, अरे तुम ही तो इतने बार बोले कब मैं आऊंगा, कब मैं आऊंगा, कब मैं मारूंगा, लो मैं आ गया। तो भगवान कंस को इस भयानक रस में क्यों डाले? क्योंकि कंस ने भगवान के माता पिता को इस रस में डाला था। जब भी देवकी किसी पुत्र को उत्पन्न करती, तो देवकी भयभीत होती कंस से, क्योंकि कंस फिर आकर इतने नृशंस तरीके से मारता उस बालक। तो क्योंकि माता देवकी कंस को एक भयानक, अब भाई नहीं देख रही थी, एक भयानक रूप में देख रही थी कंस को, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि ठीक है, तुम्हें भी मैं एक भयानक रूप में ही दिखूंगा। इसलिए कंस जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखे तो वो भयभीत होकर उस भयानक रस में कंस चला गया। तो अब देखिए, भगवान को ये नाम कृष्ण क्यों मिला है? क्यों? क्योंकि रसो वैसा, उनके अंदर रस है जिसके कारण वो सबको आकर्षित करते हैं। और वो रसो वैसा क्यों है? क्योंकि ये सारे अलग अलग प्रकार के जितने भी रस हैं, 10 प्रकार के जो रस हैं, कोई भी व्यक्ति इस संसार का नहीं कह सकता कि उसके अंदर ये गुण है। वो रसो वैसा, ये जितने भी भगवान घूम रहे हैं इन सबको पकड़ कर खड़ा करो और पूछो कि तुम्हारे अंदर, तुम किसी व्यक्ति को विभत्स रस में आकर्षित कर सकते हो, किसी को भयानक रस में, किसी को श्रृंगार रस में, और वो भी एक साथ। कोई कहेगा हां मैं खून निकाल दूं तो कोई व्यक्ति मुझसे आकर्षित होगा उस खून को देखते हुए, परंतु यहां पर भगवान ने एक साथ श्रृंगार रस और विभत्स, भयानक, रौद्र, सब एक साथ भगवान ने आदान प्रदान किया। इसलिए वो रसो वैसा है, इसलिए वो सर्व आकर्षित है, इसलिए वो है कृष्ण। इसलिए अर्जुन भगवान को कह रहे हैं स्वजनम कृष्ण, कि आपके अंदर इतने सारे रस हैं और आप सभी प्रकार के रसों के द्वारा सभी प्रकार के व्यक्ति, प्राणियों को आकर्षित करते हैं, तो आप कृपया इनको भी आकर्षित कीजिए। किस दृष्टिकोण से आकर्षित भगवान कर रहे थे? भीष्म पितामह उस वीर रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते थे। इसलिए तो भगवान, एक प्रयोजन भगवान का क्या था युद्ध करने का? केवल भीष्म पितामह को वीर रस का आदान प्रदान देने के लिए। बीच में भगवान भूल गए अर्जुन कौन है, पांडव कौन है, कितने एकत्रित हुए, केवल भीष्म पितामह जो कि मुझे एक योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने वो पहिया उठाया और भागते हुए पसीने, खून, इन सब से उस रणभूमि की रज में लेपे हुए भीष्म पितामह ने जब भगवान को इस रूप में देखा तो भीष्म पितामह पूरे संतुष्ट हो गए। और वो भगवान का प्रयोजन था पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को बिठाने का। सोचिए, तो यहां पर यह हमें समझ में आता है। अब भगवान श्री कृष्ण की तुलना चुंबक से की गई है, तो हमारी तुलना किससे की गई है? लोहे से। चुंबक और लोहे में क्या संबंध है? कि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। तो अब ये प्रश्न हम सबके मन में उठा होगा, यदि वो चुंबक हैं और मैं लोहा हूं तो क्यों नहीं हो रहा, ये आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? इतना सब कुछ बता दिया, 10 प्रकार के रस बता दिए, संस्कृत में उसका अर्थ क्या है वो सब बता दिया, फिर भी वो आकर्षण क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्यों? चुंबक में दम नहीं है या लोहे में दम नहीं? लोहे में दम है, चुंबक में दम है, तो क्या कहां कम है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा। अच्छा, एक नया उत्तर सुना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, लोहे में जंग लगा हुआ है। नहीं, लोहे में यदि जंग चढ़ा हो तो चुंबक नहीं खींच पाएगा। तो ये जंग चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, और इस जंग के वजह से हम जंग में लगे हुए हैं। मेरी जंग, अपनी जंग चल रही है। किससे? ये जंग को निकाल कर, निकाल कर। और ये हरिनाम से हम क्या कर रहे हैं? ये हरिनाम जब हम लेते हैं तो ये जंग को कुरेदते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम हुई थोड़ी? क्या होता है कि थोड़ी कम होती है फिर चढ़ जाती है। तो वो जो जो चढ़ने का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा हो रहा है, उतरने का कम हो रहा है ना? तो इसलिए वो आकर्षण महसूस नहीं हो पा रहा। फिर कभी कभी थोड़ा आकर्षित होते हैं, फिर देखते हैं जंग बीच में थोड़ी और बढ़ गई। फिर दो हफ्ता यदि मंदिर नहीं आया तो देखा, अरे बाप रे, इतनी जंग बढ़ गई। फिर माला नहीं हुई, फिर बाद में फिर एकदम तीव्रता से करते हैं माला, तो फिर से आकर्षण। फिर भगवान श्री कृष्ण ही मेरे एकमेव स्वामी है, सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर से जंग चढ़ जाती है थोड़े समय बाद। तो ये सिलसिला हमारा चल रहा है। तो इसमें ये जो उदाहरण दिया, ये उदाहरण किसने दिया है? श्रीमद् भागवत में ये उदाहरण दिया है किसी ने? प्रहलाद महाराज। जब प्रहलाद महाराज को षंड और अमर्क कौन थे? हाँ नहीं, वो शुक्राचार्य के पुत्र और गुरु। तो षंड और अमर्क, उन्होंने प्रहलाद महाराज को पूछा कि ये तुमको विष्णु के बारे में किसने बताया, और ये विष्णु की भक्ति तुम्हारे अंदर कैसे जागृत हुई? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे एक लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित रहता है, वैसे मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। वो विष्णु चुंबक के समान है, मैं लोहे के समान हूं। ये प्रहलाद महाराज ने उदाहरण दिया है। लेकिन हम इस उदाहरण को दूसरी तरीके से समझेंगे, प्रहलाद महाराज के उदाहरण को। अब देखिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु चुंबक के समान है, मैं लोहे के समान हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से, जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, वैसे मैं स्वाभाविक रूप से भगवान श्री विष्णु से आकर्षित हूं। मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। परंतु यदि हम नरसिंह लीला में देखें तो लोहे ने चुंबक को आकर्षित किया। ये कैसे? अब यदि चुंबक है और लोहा है, यदि चुंबक इतना है और लोहा इतना बड़ा है, सामने रख दो चुंबक इतना सा और लोहा इतना बड़ा, तो क्या लोहा घसीटते हुए इधर जाएगा? चुंबक आएगा ना इधर। तो प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव के उदाहरण में यदि देखें तो भगवान नरसिंह देव उस इतने से चुंबक के समान और प्रहलाद महाराज की भक्ति इतने बड़े लोहे के समान। इसलिए भगवान खींचते हुए प्रहलाद महाराज की भक्ति से खींचे गए, यहां तक कि हिरण्यकश्यपु के स्तंभ में प्रवेश किया और वहां से बाहर निकलकर प्रहलाद महाराज से इतने आकर्षित। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। तो सोचिए, भक्तों के अंदर भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा आकर्षण शक्ति पैदा हो सकती है उनकी भक्ति के द्वारा, कि यहां पर भगवान जो कि सर्व आकर्षती कृष्ण है, रसो वैस है, 10 प्रकार के रस से आदान प्रदान करते हैं, उनको खींच लेना, ये भक्त के अंदर शक्ति है। यह है भक्ति की महिमा। तो प्रहलाद महाराज हमें आश्वासन दे रहे हैं कि जो है मदन मोहन, वो मदन मोहन को मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी अपनी भक्ति से आकर्षित कर रही। खैर, हमारी स्थिति तो अभी जंग निकालना है, अभी तक हम उस स्थिति में, वो भी अगर हम थोड़ा निकाल पाए थोड़ा थोड़ा लोहा अगर चुंबक की तरफ आकर्षित होता होना शुरू हो, एक आधा इंच थोड़ा सा भी, तो भी हम भाव विभोर हो सकते हैं उसके अंदर। प्रहलाद महाराज तो बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त हैं। अच्छा, अब जब हम रसो वैसा भगवान श्री कृष्ण में जो रस है, रस का आदान प्रदान भगवान करते हैं, तो यहां पर हम देखें कि आध्यात्मिक रस है और भौतिक रस। तो आध्यात्मिक रस मुक्तिस्पद है कि उस रस में जब हम जाते हैं तो हमारी मुक्ति होती है। परंतु जो भौतिक रस भी होता है, जैसे भगवान गीता में कहें इसके विषय में, रसवर्जम रसोप्यस्य, कि वो जो रस उसका परित्याग कर कर जो परम रस को प्राप्त करता है, तो भौतिक रस के बारे में भगवान कह रहे हैं। तो भौतिक भी एक रस है प्रकार का, परंतु वो कैसा रस है? बंधन में डालने वाला रस। अब एक सुंदर उदाहरण आप लोगों ने आपके साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा, जब हम भौतिक रस के विषय में, तो एक एक पौधा है, इस पौधे के विषय में आपको बताएंगे कि कैसे इसके अंदर एक प्रकार का रस होता है, जिस रस के वजह से ये किसी कीड़े को पकड़ता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये इस प्रकार का दिखता है और इसके और भी चित्र हैं। ये इस प्रकार का दिखता है और ये ऐसे खुलता है, जैसे यहां पे खुला हुआ है, और इसका जो अंदर का भाग है, अंदर के भाग में बहुत ही सुगंधित और रसीला रस का उत्पादन होता है इसके अंदर के भाग में। परंतु वो किसके लिए होता है? कीड़े को आकर्षित करने के लिए। तो एकदम जैसा कीड़ा नशे में चला जाए, इस प्रकार का रस उत्पादित होता है। तो कीड़ा जाता है उस रस का आस्वादन करने। तो जैसे ही कीड़ा उस रस का आस्वादन करने जाता है, तो वो ऐसे फाइबर्स के ऊपर वो रस रहता है। तो कीड़ा जब वो उसे आस्वादन करने के लिए अपना मुंह खोलता है, तो वो वहां पर उसे उस फाइबर्स को दबाता है। तो वो फाइबर नहीं, वो बटन है, बटन वो बंद होने के लिए। तो वो अपने ही जीवन के बटन दबा रहा है और मृत्यु की बटन भी दबा रहा है बुलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये अब जब मध्य में चला जाता है इस पौधे के, इन पत्तों के, फिर ये बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद वो जो रस उसके अंदर था, जो इतना उसे आकर्षित किया, वो रस इस पौधे का डाइजेस्टिव जूस है, जो अब वो उस रस को इस्तेमाल कर कर इसी कीड़े को पचाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये एक प्लांट है जिसे कहते हैं मीट ईटिंग प्लांट। तो इस प्लांट को यदि कोई खाएगा तो नॉनवेज खा रहा है, पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं। तो अब देखिए ये उदाहरण क्यों लिया है आज, कि इसके अंदर ऐसा रस है कि वो इतने सारे कीड़ों को आकर्षित करता है, परंतु अंततः परिणाम क्या है उन सब कीड़ों का? मृत्यु। तो इस भौतिक संसार का जो रस है वो इसी वीनस फ्लाई ट्रैप, इस पौधे के समान है, जो पहले आकर्षित करता है और फिर हम आस्वादन करने जाते हैं, बैठते हैं, और उसी रस के आस्वादन में हमारा दुख, हमारी कठिनाई, पीड़ा, क्लेश, मृत्यु, सब कुछ उसी में लिखी हुई है। यह है भौतिक रस। इसलिए जो भौतिक रस है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अंदर ये भौतिक, ये इसके अंदर हम ढूंढ रहे हैं इन चार कार्यों में। इसकी हम थोड़े और विस्तार से चर्चा अगले बार करेंगे, इसको ये जो अंतिम भाग है आज के हमारे सेमिनार का उसे फिर से हम लेंगे, क्योंकि जो अब आध्यात्मिक रस है, जो आकर्षण का स्थान कहां पर है इसके विषय में बताया गया है। अर्च विग्रह, कीर्तन, शास्त्र, अंतिम क्या हो सकता है, महाप्रसाद। तो जैसे आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार प्रकार के आकर्षण स्थान है भौतिक रस के लिए, तो आध्यात्मिक रस के आकर्षण के स्थान है ये चार, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन के संस्था में प्रचुर मात्रा में दिए। ऐसा नहीं कि किसी में कटौती की है, प्रचुर मात्रा में। तो वो जो भौतिक रस है और ये जो आध्यात्मिक रस, जो आकर्षण के स्थान दोनों के, इसकी विस्तार से चर्चा हम अगले सेमिनार में करेंगे। आज थोड़ा विलंब हो रहा है, परंतु क्योंकि अंतिम स्लाइड अच्छा है महाप्रसाद के ऊपर, तो उसमें तो ज्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई विवाद नहीं है, कोई हमें ज्यादा मुद्दे भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, वैसे बिना किसी जंग गंज के हम उस कोने के प्रति आकर्षित होते हैं। इसकी भी चर्चा हम, इस श्लोक की चर्चा करेंगे अगली बार, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रस और परम रस, या भौतिक रस या आध्यात्मिक रस, इसके विषय में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।